सप्तम अध्याय के 113वें श्लोक में भगवान मनु राष्ट्र के नियंत्रण के उपाय बताते हैं। राष्ट्रस्य संग्रहे नित्यं विधानामिदमाचरेत् सुसंग्रहीत राष्ट्रो हि पार्थिवः सुखमेधति। अतः राजा को चाहिए राष्ट्रस्य संग्रहे राष्ट्र की सुव्यवस्था नियंत्रक और अभिवृद्धि के लिए नित्यम अर्थात रोज सदैव इदं विधानम आचरेत इस प्रकार व्यवस्था को लागू करे ही, क्योंकि सुसंग्रहित राष्ट्र पार्थिवा सुरक्षित नियंत्रित तथा सुव्यवस्थित राष्ट्र वाला राजा ही सुखम एधते सुखपूर्वक रहते हुए बढ़ता है उन्नति करता है। अतः समग्र अर्थ देखते हैं, इसलिए राजा और राजसभा राजकार्य की सिद्धि के लिए ऐसा प्रयत्न करे कि जिससे राजकार्य यथावत सिद्ध हो। जो राजा राज्य पालन में सब प्रकार से तत्पर रहता है उसको सदा सुख मिलता है। 114वें श्लोक में नियंत्रण केंद्रों और राज कार्यालयों का निर्माण करना चाहिए ऐसा बताते हैं। द्वयोस्राणां पञ्चानां मध्ये गुल्ममधिष्ठितं तथा ग्रामशतानां च कुर्याद् राष्ट्रस्य संग्रहम्। इसलिए द्वयोः त्रयाणां पञ्चानां मध्ये दो तीन और पांच गांवों के बीच में गुल्मम अधितिष्ठितम एक एक नियंत्रण केंद्र या उन्नत राज कार्यालय बनाए तथा ग्राम शतानाम इसी प्रकार 100 गांवों तक कार्यालयों का निर्माण करें और च इस व्यवस्था के अनुसार राष्ट्रस्य संग्रहम कुर्यात् राष्ट्र को सुव्यवस्थित सुरक्षित एवं वसीभूत रखे। 115वें श्लोक में और अधिकारियों की नियुक्ति करनी चाहिए ऐसा बताते हैं। ग्रामस्याधिपतिम कुर्यात् दशग्राम अधिपतिम तथा विंशतिशतेशम च सहस्रपतिमेव च। ग्रामस्य अधिपतिम कुर्यात् एक एक ग्राम में एक एक प्रधान पुरुष को रखे तथा 10 ग्रामपतिम उन्हीं 10 के ऊपर दूसरा, विंशत ईसम उन्हीं 20 गांव के ऊपर तीसरा, शतम ईसम उन्हीं 100 गांव के ऊपर चौथा और सहस्रपतिमेव उन्हीं सहस्र गांव के ऊपर पांचवा पुरुष रखे। अर्थात जैसे आजकल एक ग्राम में एक प्रधान और 10 ग्रामों में एक थाना और 2 थानों पर एक कोतवाली और 5 थानों पर एक तहसील और 10 तहसीलों पर एक जिला स्थित है, उसी प्रकार से 115वें श्लोक में विधान किया गया है। 116वें श्लोक में बताते हैं। ग्राम दोषान समुत्पन्नान ग्रामिकः शनकैः स्वयं संये ग्राम ददेशाय दशेषु विंशति इति शिन्ने। इसी प्रकार प्रबंध करे और आज्ञा देवे कि ग्रामिकः वह एक एक ग्रामों के पति ग्राम दोषान समुन्नयान समुत्पन्नान ग्रामों में नित्य प्रति जो जो दोष उत्पन्न हो उनको सनकैः स्वयं गुप्तता से ग्राम देशाय ग्रामपति को संयेत विदित करे। दशेशः विंशति ईशिने वह 10 ग्रामपति उसी प्रकार 20 ग्रामियों के स्वामी को वर्तमान स्थित बतावे। विंशति दस्तु सत्सर्वं सतेशाय निवेदयत संचेद ग्राम शते सस्तु सहस्रपतये स्वयं। और विंशति तिहि 20 ग्रामों का अधिपति तत्सर्वम शतेशाय निवेदित। उन 20 ग्रामों के वर्तमान स्थिति को 100 ग्रामाधिपति को बताए और शतेशः तु स्वयं सहस्त्रपतिम। और वैसे 100-100 ग्रामों के पति 1000 ग्रामों के स्वामी को समसेत वर्तमान स्थिति का बताएं। 118वें श्लोक में कहते हैं कि यान राज प्रदेयानि प्रत्यहं ग्रामवासिभिः अन्नपानीन्धनादीन ग्रामिकस्तान्यवाप्नुयात्। ग्रामवासिभिः, ग्रामवासियों द्वारा प्रत्यहं प्रतिदिन यानि अन्नपान ईंधन आदीन राजप्रेदानि, जो जो अन्न पेय वस्तु ईंधन आदि राजा को पेय पदार्थ है तान उन्हें ग्रामिकः अवाप्नुयात्, गांव का अध्यक्ष ग्रहण कर ले। 119वें श्लोक में कहते हैं दशी कुलं तु भुञ्जीत विंशी पंच कुलानि च ग्रामं दशशताध्यक्षः सहस्त्रपतिः पुरम। दशी 10 ग्रामों का अधिपति, कुलं भुञ्जीत एक कुल की भूमि को अपने के लिए उपयोग करे, च विंशी पंचकुलानि और 20 गांवों का स्वामी 5 कुलों की भूमि को अपने लिए उपयोग करे, ग्राम शताध्यक्ष और 100 गांवों का स्वामी एक गांव को और सहस्त्रपति ही पुरम और 1000 गांवों के स्वामी एक नगर को अपने लिए उपयोग करे। 120वें श्लोक में कहते हैं तेषां ग्राम्यणि कार्याणि पृथक् कार्याणि चैव हि राज्ञोऽन्यः सचिवः स्निग्धस्तानि पश्ये तदिन्द्रितः। तेषां, उन पूर्वोक्त अध्यक्षों के ग्राम्याणि कार्याणि च पृथक् कार्याणि एव हि, गांवों के संबद्ध राज्य कार्यों को और अन्य भिन्न भिन्न कार्यों को भी राज्ञः अन्यः स्निग्धः सचिवः, राजा का एक विश्वास पात्र प्रमुख मंत्री अतंद्रितः आलस्य रहित होकर पश्येत, देखे। 120वें श्लोक की विस्तृत व्याख्या करते हुए यहां पर हम देखते हैं कि सबसे पहला राजा होता है जो मुख्य राज्यसभा अध्यक्ष होता है, जितेंद्रिय क्षत्रिय होता है, और उसके अलावा एक राज्यसभा होती है, दूसरी ब्रह्मसभा तथा न्याय सभा होती है, ब्रह्मसभा या न्याय सभा होती है, और तीसरी धर्म निर्णय सभा या विधान परिषद होती है। इसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले राज्यसभा में 7-8 प्रमुख मंत्री हों या आवश्यकता अनुसार अधिक भी हो सकते हैं, दूसरा अवर सचिव हो और तीसरा सहयोगी अधिकारी एवं दूताधिकारी हो, चौथा विभागों के अध्यक्ष हों, पांचवा सहस्त्र ग्राम प्रधान, छठा सतग्राम प्रधान और सातवां 20 ग्राम प्रधान, आठवां 10 ग्राम प्रधान, ये सब राज्यसभा के सदस्य होते हैं, और नौवां 1 ग्राम प्रधान सदस्य और दसवें में कर्मचारी गण आते हैं। ये सब एक प्रमुख मंत्री के अधीन होंगे और प्रत्येक प्रमुख मंत्री अपने अपने विभागों तथा कर्मचारियों का निरीक्षण करें। दूसरा पक्ष हम देखते हैं कि ब्रह्म सभा या न्याय सभा जिसे कहते हैं, उसमें राजा या राजा का अधिकृत विद्वान मुख्य न्यायाधीश होता है, दूसरा वेद विद्याओं के ज्ञाता 3 विद्वान होते हैं, और तीसरा मुकदमों के अनुसार उस विषय के सलाहकार होते हैं, ये न्याय सभा तीसरी विधान परिषद या धर्म निर्णय सभा, उसमें एक तो ऋग विद्या कहा गया था, दूसरा यजुर्विद्या कहा गया था, तीसरा साम विद्या का ज्ञाता, चौथा कारण अकारण का ज्ञाता विद्वान, पांचवा निरुक्त शास्त्र का ज्ञाता, छठा धर्मशास्त्र का ज्ञाता, सातवां ब्रह्माचार्य आश्रम की एक प्रतिनिधि विद्वान, आठवां गृहस्थ आश्रम का एक प्रतिनिधि विद्वान, नौवां वानप्रस्थ आश्रम का एक प्रतिनिधि विद्वान, दसवां न्याय शास्त्र का ज्ञाता तर्क करने वाला विद्वान। इस प्रकार से हम देखते हैं कि मनु प्रोक्त राज्य संचालन के लिए जो कार्य प्रणाली के कर्मचारी हैं उनका विभाजन राज्यसभा, ब्रह्मसभा और विधान परिषद में किया जा सकता है। अगले 121वें श्लोक में नगरों में सचिवालय का निर्माण का विधान किया गया है। नगरे नगरे चैकम कुर्यात् सर्वार्थ चिंतकम उच्चै स्थानम घोर रूपम नक्षत्राणामिव ग्रहम। राजा को चाहिए कि बड़े बड़े नगरों में एक एक विचार करने वाला सभा का सुंदर उच्च और विशाल जैसा चंद्रमा है वैसा एक एक घर बनवावे। उसमें बड़े बड़े विद्या वृद्ध जिन्होंने विद्या से सब प्रकार की परीक्षा की हो वे बैठकर विचार किया करें। जिन नियमों से राजा और प्रजा की उन्नति हो वैसे वैसे नियम और विद्या प्रकाशित करें। नगरे नगरे बड़े बड़े नगर में एकम एक एक नक्षत्राणाम ग्रहम, जैसे नक्षत्रों के बीच चंद्रमा है इस प्रकार विशाल और प्रभावकाली घोर रूपम भयकारी यानी कि बहुत बड़ा जिसे देखकर नियम के विरुद्ध चलने वाले के मन में भय उत्पन्न हो। सर्व अर्थक चिंतकम जिसमें राजकार्यों का चिंतन हो। उच्चई स्थानकम ऊंचा भवन अर्थात सचिवालय कुर्यात बनावे। 122वें श्लोक में राज कर्मचारियों के आचरण का निरीक्षण का विधान बताते हैं। सतानुप परिक्रामित सर्वानी व सदा स्वयं तेषां वृत्तं परिणयेत सम्यग्राष्ट्रे सुतक्षरै सह। अर्थात वह मंत्री सचिव तान सर्वान सदा स्वयं अनुपरिक्रामित उन निर्मित सब सचिवालयों का सदा स्वयं घूम फिरकर परीक्षण करता रहे और राष्ट्रे ततः चरई तेषां वृत्तं परिणयेत और देश में अपने दूतों के द्वारा वहां नियुक्त राजपुरुषों के आचरण की गुप्त रीत से जानकारी प्राप्त करता रहे। 123वें श्लोक में रिश्वतखोर कर्मचारियों पर दृष्टि रखे ऐसा विधान किया गया है। राज्ञो हि रक्षाधिकृता परस्वादायिन प्रजा सठा भ्रत्ता भवन्ति प्रायेण तेभ्यो रक्षे दिमा प्रजा ही, क्योंकि प्रायेण प्रायः राज्ञः रक्षाधिकृता भ्रत्या राजा के द्वारा प्रजा की सुरक्षा करने के लिए नियुक्त राजसेवक परस्वादायिनः दूसरों के धन के लालची अर्थात रिश्वतखोर होते हैं। शठाः ठग या धोखा करने वाले भवन्ति हो जाते हैं। तेभ्यः इमाः प्रजा रक्षेत ऐसे राजपुरुषों से अपनी प्रजा की रक्षा करना चाहिए अर्थात ऐसे प्रयत्न करे कि प्रजाओं के साथ राज्य के साथ ऐसा बर्ताव न कर पाए और उनके दंड के बारे में 124वें श्लोक में बताया गया है। ये कार्य के भ्योर्थमेव ग्रहीत्युः पापचेतसः त्रिशाम सर्वस्वमादाय राजा कुर्यात् प्रवाशनम्। पापचेतसः पापी मन वाले ये जो रिश्वतखोर और ठग राग पुरुषा कार्य के भ्या यदि काम कराने वाले और मुकदमे वालों से अर्थक ग्रही हुए फिर भी धन अर्थात रिश्वत ही ले ले तेषां सर्वस्वम् आदाय, उनका सब कुछ अपहरण करके राजा प्रवासनम कुर्यात्, उन्हें देश से निकाला दे दे। जो राजपुरुष अन्याय से वेद वादी प्रतिवादी से गुप्त धन लेकर पक्षपात और अन्याय करें, उनका सर्वस्व हरण करके यथा योग्य दंड देकर ऐसे देश में रखे जहां से वह पुनः लौट कर ना आ सकें, क्योंकि यदि उनको दंड न दिया जाए तो उनको देखकर राजपुरुष भी ऐसे दुष्ट काम करेंगे और दंड दिया जाए तो बचे रहेंगे। कर्मचारियों के वेतन का कैसे निर्धारण हो, इसका 125वें श्लोक में विधान किया गया है। राजा कर्मसुयुक्तानां श्रीणां प्रेष्य जनस्य च प्रत्यहं कल्पयेत् वृत्तिं स्थानं कर्मानुरूपतः। राजा कर्मसुयुक्तानां, राज कार्यों में नियुक्त राजपुरुषों, स्त्रीणां च प्रेष्य जनस्य, स्त्रियों और सेवक वर्ग की कर्म अनुरूपतः पद और काम के अनुसार प्रतिदिनम स्थानम वृत्तिम कल्पयेत्, कर्म स्थान और जीविका निश्चित कर दे। जितने से अर्थात जितने से उन राजपुरुषों का योगक्षेम भली भांति हो और वे भली भांति धनाढ्य भी हों, उतना धन व भूमि राज्य की ओर से मासिक अथवा वार्षिक अथवा एक बार मिला करके, और जो वृद्ध हों उनको भी आधा मिला करे। परंतु ध्यान में रखें कि जब तक वे जिए तब तक वह जीविका बनी रहे, पश्चात नहीं। परंतु इनकी संतानों का सत्कार व नौकरी उनके गुणों के अनुसार अवश्य देवे, और जिनके बालक जब समर्थ हों और उनकी स्त्री जीती हो तो सबके निवाह रार्थ राजा की ओर से यथा योग्य धन मिला करे। परंतु जो उसकी स्त्री अथवा लड़के कुकर्मी हो जाएं तो कुछ भी न मिले, ऐसी नीति राजा बराबर रखे। यहां पर हम देखते हैं मनु द्वारा बताया गया ये शासन आज भी हमारे देश में नियत है। 126वें श्लोक में कहते हैं, पणो देवो वकष्टस्य षडुत्कष्टस्य वेतनम षाड्मासिकस्तथाक्षादो धान्यद्रोणस्तु मासिकः। अवकृष्टस्य पणः, निम्नतर स्तर के भृत्य को कम से कम एक पण, उत्कृष्टस्य सत और ऊंचे स्तर के भृत्य को षट पणः वेतनम देया, वेतन प्रतिदिन देना चाहिए, तथा उन्हें षाड मासिकः आक्षादः प्रति 6 महीने पर ओढ़ने पहनने के वस्त्र, और मासिकः धान्य द्रोणः 1 महीने में 1 द्रोण अर्थात 64 सेर अन्न देना चाहिए। इसी श्लोक के माध्यम से हम कौटिल्य के अनुसार जो मंत्रियों से सेवकों तक का भरण पोषण वे बताया गया है वह विचार करते हैं। यहाँ पर आचार्य कौटिल्य ने अपने समय के मूल्य स्तर के अनुसार राजा के परिजनों से लेकर मंत्रियों आमात्यों अध्यक्षों निम्न स्त्रीय कर्मचारियों तक भृत्य पोषण वे वेतन का निर्धारण किया है। कौटिल्य के अनुसार धन और भूमि दोनों ही भृत्य के रूप में प्रदान करनी चाहिए। भूमि के संबंध में यह शर्त रखी है कि उसे कोई बेच नहीं सकता न गिरवी रख सकता है। पहला ऋत्विक आचार्य मंत्री पुरोहित सेनापति युवराज राजमाता और रानी इनको प्रतिवर्ष 48,000 पण देने चाहिए, और द्वारपाल अंतःपुर का अधिकारी आयुधाध्यक्ष समाहर्ता अर्थात कर संग्रह का अधिकारी और कोष्ठागाराध्यक्ष इनको 24,000 पण प्रतिवर्ष देना चाहिए। तीसरे में राजकुमार के भाई उपसेनापति व्यापार अध्यक्ष नगराध्यक्ष कृषि अध्यक्ष आदि को 1,000 पण प्रतिवर्ष देना चाहिए। और प्रथम श्रेणी के वास्तु कर्म विशेषज्ञ हस्त अश्व रथ अध्यक्ष दंडाधिकारी 800 पण प्रतिवर्ष वेतन बताया गया है। इस प्रकार सेना के विविध विभागीय अध्यक्षों को, सैन्य सैनिकों को 2,2,800 पण प्रतिवर्ष, शिल्पी आय विभाग के कर्मचारी, क्लर्क, गुप्तचर, वैद्य, गायक, वादक आदि को 1,1,000 पण 120 पण तक प्रतिवर्ष वेतन निर्धारित किया गया है। ऐसा चाणक्य के अर्थशास्त्र में बताया गया है। 127वें श्लोक में कर अर्थात संबंधी व्यवस्थाएं बताई गई हैं। क्रय विक्रय मध्वानम भक्तम च सर परिव्ययम योग क्षेमं स संप्रक्ष वणिजोदापयेत करान। क्रय विक्रयम खरीद और बिक्री, भुक्तम भोजन और कल्याण, संप्रेक्ष इन बातों पर विचार करके वणिजः करान दापयेत, राजा व्यापारियों से कर लें। यथा फलेन युञ्जेत राजा कर्ता च कर्मणाम तथा वेक्षन पौराष्ट्रम कल्पत्येत सततम करान। यथा राजा च कर्मणाम कर्ता, जैसा राजा और कर्मों का कर्ता राजपुरुष व प्रजाजन फलेन युज्जेत सुख रूप फल से युक्त होवे, तथा अवेक्ष वैसा विचार करके नृपः राष्ट्रे करान सततम कल्पयेत, राजा राज्यसभा राज्य में कर स्थापन करें। यथाल्पाल्प मदंत्याद्यम वार्यो को वत्षट पदाः तथाल्पाल्पो ग्रहीतव्यो राष्ट्राद्राज्ञाब्दिकः करः। यथा जैसे वार्यो का वत्स षट पदाः, जो कि बछड़ा और भंवरा अल्प अल्पम आद्यम अदंते थोड़े थोड़े भोग्य पदार्थ को ग्रहण करते हैं, वैसे राज्ञा राष्ट्रस्य अल्पः अल्पः आब्दिकः कर ग्रहीतव्यः, राजा प्रजा से थोड़ा थोड़ा वार्षिक कर लेवे। पचाशद भाग आदेयो राज्ञः पशु हिरण्ययो धान्यानाम अष्टमो भागः षष्ठो द्वादश एव वा। राजा को पशु हिरण्ययो पशुओं और सोने के लाभ में 50 भागा, 50वां भाग, धान्यानाम षष्ठः अष्टमः वा द्वादश एव आदेयः, अन्यों का छठा और आठवां अधिक से अधिक 12वां भाग ही लेना चाहिए। जो व्यापार करने वाले शिल्पी और सुवर्ण चांदी का जितना लाभ हो उसमें से 50वां भाग, चावल आदि अन्नों में छठा भाग, और जो धन लेवे वो उसी प्रकार से लेवे जिसमें किसान आदि खाने पीने धन से रहित होकर दुख न पावे। इस प्रकार से 130वें श्लोक में महर्षि कर का विधान करते हैं। 131वें श्लोक में महर्षि मनु कहते हैं, आददीताथ खड़भागम द्रुमांश मधु सर्पिशाम गंधौषधि रसानां च पुष्पमूल फलस्य च। अथ और द्रुमांश सर्पिशाम गोंद मधु घी और गंध औषधि रसानां गंध औषधि रस तथा पुष्पमूल फलस्य फूल मूल और फल इसका खट भागम आददीत छठा भाग कर में लेवे। 132वें श्लोक में कहते हैं, पत्रशाक दृढ़ानां च चर्मणां वैदलस्य च मृण्मयानां च भाण्डानां सर्वस्याश्ममयस्य च। और पत्र शाक तृणानाम वृक्षपत्र शाक तृण चरमणाम वैदलस्य अर्थात चमड़ा बांस निर्मित वस्तुएं, मृणमयानाम भांडानाम मिट्टी के बने बर्तन, सर्वस्य अश्ममयस्य सभी प्रकार पत्थर से निर्मित पदार्थ इनसे छठा भाग कर्मे लेवे। ये मनुप्रोक्त कर व्यवस्थाएं सर्व प्राचीन एवं सर्वाधिक मान्य हैं। मनु सर्वप्रथम समाज व्यवस्थाओं के प्रवर्तक थे। एक राजा के रूप में उन्होंने इन व्यवस्थाओं को लागू कर समाज को व्यवस्थित एवं संगठित किया। अन्य व्यवस्थाओं की तरह जिस कर व्यवस्था का उन्होंने निर्धारण किया था लगभग वैसे ही आज तक चलती आ रही हैं। इससे ज्ञात होता है कि मनु की व्यवस्थाओं और मनुस्मृति की समाज में सर्वोच्च मान्यता है। इसकी पुष्टि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी निम्नलिखित वचनों में होती है। मात्स्यान् न्यायाभिभूता प्रजा मनुर्वैवस्वत्तम राजानं प्रचक्रिरे धान्यम खड़भागम पर्णदशभागम हिरण्यचास्य भागदेयम प्रकल्पमाशु तेन भृता राजानं प्रजानां योगक्षेमावः तेषां किलविषदण्डकरा हरन्ति योगक्षेमं वहाश्च प्रजानां। बारहवें अध्याय में आठवें प्रकरण में महर्षि चाणक्य लिखते हैं कि जैसे बड़ी छोटी मछली निर्बल मछली को खा जाती है, इसी प्रकार बलवान लोगों ने निर्बलों को जीना मुश्किल कर दिया। इस अन्याय से पीड़ित हुई प्रजाओं ने अपनी सुरक्षा और कल्याण के लिए विवस्वन मनु को अपना राजा नियुक्त किया और तभी से प्रजाओं में खेती की उपज का छठा भाग, व्यापार इत्यादि का दसवां भाग और सुवर्ण को कर रूप में लेना निश्चित कर दिया। इस कर को पाकर राजा और प्रजाओं की सुरक्षा कल्याण की सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। इस प्रकार निर्धारित कर और दंड व्यवस्था प्रजाओं के कष्टों को निवारण करने और कल्याण करने में सहायक सिद्ध हुई। 133वें श्लोक में भगवान कहते हैं, म्रियमाणोऽप्यदादीत दददीत न राजा श्रोतियात्करम न च क्षुधास्य संसीद्देक्षो स्त्रियो विषये वसन। म्रियमाणः अपि राजा, मरने जैसी अवस्था में पहुंचा हुआ राजा भी श्रोतियात करम न अददीत, वेद पाठी विद्वान से कर न ले च अस्य विषये वसन, और इसके राज्य में रहते हुए श्रोतिया सुदाम न संसीदेत, कोई वेदपाठी भूख से न मरने पाए। यस्य राज्ञास्तु विषये श्रोतिया शीदति क्षुधा तस्यापि तक्षुधा राष्ट्रम अचिरेणैव शीदति। यस्य राज्ञा तु विषये, जिस राजा के राज्य में श्रोतिया वेद पाठी ब्राह्मण क्षुधा सीदते भूख से पीड़ित होता है या भूख से मृत्यु को प्राप्त होता है, तस्य तदराष्ट्रम अपि अचिरेण एव क्षुधा सीदते, उसका वह देश भी शीघ्र ही भूख अर्थात दुर्भिक्ष से पीड़ित होता है। सुनुवत्ते विदित्वास्य वृत्तिम धर्म्याम प्रकल्पयेत संरक्षेत सर्वतश्चैनम पिता पुत्रमिवौरसम। इसीलिए अस्य श्रोतव्यत्ते विदित्वा, इस विद्वान के शास्त्र ज्ञान और अकारण को जानकर वैसी योग्यता अनुसार धर्म्याम वृत्तिम प्रकल्पयेत, धर्म की जीविका निश्चित कर दे और पिता पुत्रम एव, जैसे पिता अपनी विशिष्ट पुत्र की रक्षा करता है, एनम सर्वतः रक्षेत, इन वेदपाठी की रक्षा और सुरक्षा करे। संरक्षमाणो राज्ञोऽयं कुरुते धर्ममन्वहम तेनायुर्वर्धते राज्ञो द्रविणम राष्ट्रमेव च। राज्ञां संरक्षमाणम, राजा के द्वारा सुरक्षित रहता हुआ वेदपाठी विद्वान। अन्वहम प्रतिदिन यम धर्मम कुरुते, जिस धर्म का पालन करता है तेन, उस धर्म से राज्ञः द्रविणम आयु वर्धते, राजा के धन आयु बढ़ते हैं। च राष्ट्रमेव, राष्ट्र की भी अभिवृद्धि होती है। यत्किंचिदपि वर्षस्य दापयेत् करसंज्ञितं व्यवहारेण जीवन्तं राजा राष्ट्रे पृथग्जनम्। राष्ट्रे राज्य में व्यवहारेण जीवन्तं पृथग्जनम्, व्यापार से जीविका चराने वाले प्रत्येक व्यक्ति से राजा यत्किंचिदपि, जो कुछ भी वर्षस्य करसंज्ञितं दापयेत्, वार्षिक कर में के रूप में निर्धारित होता हो वह भाग राज्य के लिए दिलवाए अर्थात ग्रहण करे। कारुकांक्षिल्पिनश्चैव शूद्रांशात्म नोपजीविनः, एकैकं कारयेत् कर्मं मा आशिमासि महीपतः। करुकान अर्थात कारीगर, शिल्पिनः कलाकार, शूद्रान आत्मोपजीविनः, ऐसे शूद्र जो सेवा न करने करके अपने आश्रित किसी कार्य से आजीविका करते हैं, उनसे महीपतः मास मास प्रत्येक मास में एकम एकम कर्म कारेत, एक एक काम करवाए अर्थात कर्मे न ले। कर ग्रहण में अति तृष्टा तृष्णा हानिकारक होती है, इसका 139वें श्लोक में बताया गया है। नोक्षिन्द्या आत्मनो मूलम परेशाम चाति तृष्णया, उक्षिन्दन्ह्यात्मनो मूलम आत्मानं तांश पीडयेत्। अति तृष्णया, अति लोभ से आत्मना अपने, परेशाम मूलम दूसरे के सुख के मूल को, न उक्षिन्द्यात् उक्षिन्न अथवा नष्ट कदापि न करे, क्योंकि मूलम एक उक्षिंदन मूल को नष्ट करने से वह व्यवहार और सुख के मूल का छेदा करता है। आत्मानं चतान पीड़यत, अपने और उनको पीड़ा ही देता है। तीक्ष्णश्चै स्मृतश्चैश्च कार्यं वीक्ष महीपते, तीक्ष्णश्चैव मृदुश्चैव राजा भवति सम्मतः। महीपति कार्यम वीक्ष, कार्य को देखकर, तीक्ष्ण च मृदुएव स्यात्, तीक्ष्ण और कार्य कोमल भी होवे, तीक्ष्ण च एव वह दुष्टों पर तीक्ष्ण और मृदु श्रेष्ठ पर कोमल रहने से राजा सम्मता भवत, अतिमाननीय होता है। रुग्णावस्था में प्रधान अमात्य को राजसभा का कार्य सौंपना। आमात्य मुख्यम धर्मज्ञम प्राज्ञम दान्तम कुलोद्गतम स्थापयेदासने तस्मिन् खिन्नः कार्ये क्षणे नृणाम। नृणाम कार्य क्षणे खिन्नः, प्रजा की कार्यों को देखने में रुग्णता आदि कारण असक्त होने पर, तस्मिन् आसने उस अपने आसन पर, धर्मज्ञम धर्मकारी धर्मज्ञाता प्राज्ञम बुद्धिमान, दान्तम जितेंद्रिय, कुलोद्गतम कुलीन, अमात्य मुख्यम सबसे प्रधान मंत्री को स्थापित बिठा देवे, अर्थात रुग्णावस्था में प्रधान अमात्य को अपने स्थान पर राजकार्य संपादन के लिए नियुक्त करे। एवं सर्वं विधायेद अमिति कर्तव्यमात्मनः, युक्तश्चैव प्रमत्तश्च परिरक्षे दिमाह प्रजाः। एवं इस प्रकार सर्वम इति कर्तव्यम विधाय, सब राज्य का प्रबंध करके, युक्ता सदा इनमें युक्त, च अप्रमत्ता और प्रमाद रहित होकर, आत्मनः इमाह प्रजाः परिरक्षेत, अपनी प्रजा का पालन निरंतर करे। ब्रीको संत्यो यस्य राष्ट्रात् धृग्यन्ते दस्युभिः प्रजा सम्पश्यतः सभ्रत्यस्य मृतः स न तु जीवति। यस्य सभृत्तस्य संपश्यतः, जिस भृत्य सहित देखते हुए राजा के राष्ट्रात् राज्य में से दस्युभिः विक्रोशयन्तः, प्रजा हृन्ते, डाकू लोक रोति विलाप करती प्रजा के पदार्थ और प्राणों को हरते हैं, सह मृतः, वह जानो भृत्य अमात्य सहित मृतक हैं। न तु जीवत, जीता नहीं है, महादुख को पाने वाला है। क्षत्रियस्य परोधरभः, प्रजानामेव पालनम् निर्दष्ट फलभोक्ता ही राजा धर्मेण युज्यते। इसलिए क्षत्रियस्य प्रजानामेव पालन परम धर्मः, राजाओं का प्रजा पालन ही करना परम धर्म है। निर्दिष्ट फलभोक्ता ही राजा, और जो मनुस्मृति के सप्तम अध्याय में कर लेना लिखा है, और जैसा सभा नियत करे उसका भोक्ता राजा, धर्मेण युज्यति, धर्म से युक्त होकर सुख पाता है, इसके विपरीत दुख को प्राप्त करता है। राजा के दैनिक कर्तव्य 145वें श्लोक में बताए गए हैं। उत्थाय पश्चिमीयामि कृतशौचः समाहितः हुताग्निर्ब्राह्मणानांश आचार्य प्रविशेत् शुभां सभां। पश्चिमीयामि उत्थाय, जब पिछली प्रहर रात रहे तब उठकर कृतशौचम, शौच और समाहित सावधान होकर परमेश्वर का ध्यान, हुताग्नि अग्निहोत्र, ब्राह्मणान अर्च ब्राह्मणों को का सत्कार च, और भोजन करके शुभाम सभाम प्रविशत, सभा के भीतर प्रवेश करे। एक सौ सैतालीसवें अध्याय में श्लोक में राज्य संबंधी मंत्रणाओं के स्थान बताए गए हैं। 146वें श्लोक में सभा में जाकर प्रजा के कष्टों को सुने, ऐसा बताया गया है। तत्रिस्थिता प्रजा सर्वा प्रतिनंद्यम विसर्जयेत, विसर्ज्य च प्रजा सर्वान मंत्रये सह मंत्रिभिः। तत्र, उस सभा में जाकर स्थिता बैठकर, सर्वा प्रजा प्रतिनंद्य, जहां पर सारी प्रजाओं समस्याओं कष्टों का संतुष्टि कारक समाधान कर उन्हें प्रसन्न करके विसर्जयेत, भेज दे, और फिर सर्वाह प्रजा विसर्ज, सभी प्रजाओं को भेजने के बाद मंत्र भी सामंत्रयेत, मंत्रियों के साथ राज्य व्यवस्था पर विचार विमर्श करे। राज्य संबंधी मंत्रणाओं के स्थान बताया है कि गिरिप्रष्टम समारोह प्रासादम वारहो गतः अरण्ये निःशलाके वा मंत्रोदभिवादितः भावितः। गतः, पश्चात, उसके साथ घूमने के लिए चला जाए। गिरिप्रष्ठम वा रह प्रसादम, पर्वत की शिखा पर अथवा एकांत घर में, वा अरण्ये निःशलाके, जंगल जिनमें एक सलाका भी न हो, वैसे एकांत स्थान में समारोह बैठकर, विभाविता विरुद्ध भावना को छोड़कर मंत्रयेत, अभिभाविता विरुद्ध भावना को छोड़कर मंत्रयेत, मंत्रियों के साथ विचार विमर्श करे। एक सौ अड़तालीसवें श्लोक में गोपनीयता का महत्व बताते हैं। यस्य मंत्रम न जानाति समागम्य पृथक जना न कृष्णाम पृथ्वी भुंक्ते कोशहीनोपि सपार्थिवः। जिस राजा के मंत्रम पृथक जनाः समागम्य न जानन्ति, जिस राजा के गूढ़ विचार अन्य जन मिलकर नहीं जान सकते, अर्थात जिसका विचार गंभीर शुद्ध परोपकार्थ सदा गुप्त रहे, सकोशहीनः अभिपार्थिवः, वह धनहीन राजा भी कृष्णाम पृथ्वी भुंक्ते, सब पृथ्वी का राज्य करने में समर्थ होता है। जड़मूकान धवधीरांस तिर्यग्यो नान्वयोतिगान श्रीमेक्ष व्याधित व्यंगान मंत्रकाले पशारयेत जड़मूक अंध बधिरान, मूर्ख गूंगे अंधे और बहरे, तैर्यक योनान, तोता मैना आदि पक्षी, वयह अतिगेहान, बूढ़े, स्वेच्छाचारी, स्त्री म्लेच्छ, विकलांगो अथवा इनको मंत्रकाले अपसारयेत, मंत्रणा के समय हटा दे। भिन्द्यन्त्व मतामंत्रम तैर्ययोनास्तथैव च स्त्रियश्चैव विशेषेण तस्मास्त्राद्रतो भवेत्। अवमता कभी अपमानित कर देने पर ये तैर्यक योना तोता मैना इत्यादि विशेषेण स्त्रियः एव विशेष रूप से स्त्रियः मंत्रम भिनन्ति गुप्त रहस्यों को प्रकट कर देती हैं। तस्मात् इसलिए तत्र आद्रतः भवेत् उनको दूर से दूर हटाने का यत्न करे। 191 श्लोक में कहते हैं मध्यम दिनेर्धरात्रेवा विश्रांतो विगतक्लमः चिन्तयेत् धर्मकामार्थान् सार्धं तैरेकैव वा। मध्यम दिने दोपहर के समय अथवा विश्रांतः विगत कलमः विश्राम करके थकावट रहित होकर आलस्य रहित होकर स्वस्थ प्रसन्न चित्त शरीर मन से अर्धरात्र आधी रात के समय धर्म काम अर्थान धर्म काम और अर्थ संबंधी बातों को तह सार्धम उन मंत्रियों के साथ मिलकर वाह अथवा परिस्थिति विशेष में एक एव चिंतयेत अकेले ही विचार करें। परस्पर विरुद्धानां तेषां च समुपार्जनम् कन्यानां संप्रदानम् च कुमाराणां च रक्षणम्। राजा जो तेषां परस्पर विरुद्धानां समुपार्जनम् उस धर्म अर्थ काम में परस्पर विरोध आ पड़ने पर उसे दूर करना और उसमें अभिवृद्धि करना, कन्यानां कुमाराणां संप्रदानम् च रक्षणम्, कन्याओं और कुमारों का गुरुकुलों में भेजना और उनकी सुरक्षा तथा विवाह व्यवस्था का भी विचार करे। दूत संप्रेषण चैव कार्यशेषम तथैव च अंतःपुर प्रचारम च प्रणधीनाम च चेष्टितम्। और दूतों को इधर उधर भेजना तथैव कार्यशेषम उसी प्रकार अन्य शेष कार्यों को पूर्ण करना च अंतःपुर प्रचारम अंतःपुर महल के आंतरिक आचरणों गतिविधियों एवं स्थितियों और प्रणिधीनानां चेष्टितम् नियुक्ति गुप्तचरों के आचरणों एवं गतिविधियों पर ध्यान रखें और विचार करें। अष्टविधि कर्म आदि का चिंतन 154 श्लोक में बताया गया है। कृष्णम् चाष्टविधिम् कर्मम् पञ्चवर्गस्ततत्त्वतः अनुराग परौ च प्रचारम मंडलस्थ च। और कृष्णम अष्टविधम कर्म संपूर्ण अष्टविधि कर्म तथा पंचवर्गम पंचवर्ग की व्यवस्था अनुराग लगाव और अपराग स्नेह का अभाव द्वेष तथा मंडलस्थ प्रचारम मंडल की गतिविधि का आचरण तत्वतः वीक्षमाणम इन बातों पर बैठकर ठीक ठीक विचार करें। मध्यमस्य प्रचारं च विजिगीषोश्च चेष्टितम् उदासीन प्रचारं च शत्रवोश्चैव प्रयत्नतः। मध्यमस्य प्रचारं मध्यम राजा के आचरण और गतिविधि तथा विजिगीषोः चेष्टितम् विजिगीष राजा के प्रयत्नों उदासीन प्रचारणम् प्रचारम् उदासीन राजा की स्थिति गतिविधि शत्रोः एव शत्रु राजा के आचरण एवं स्थिति गतिविधि आदि का भी प्रयत्नतः प्रयत्नपूर्वक विचार करे अर्थात विचार करके तदनुसार प्रयत्न भी करे आचरण में लाए। 156 श्लोक में विचारणीय 8 और मूल प्रकृतियां बताई गई हैं। एताः प्रकृतयो मूलं मण्डलस्य समासतः अष्टौ चान्या समाख्याता द्वादशैव तु ताः स्मृताः समासदः। संक्षेप में, एताः मण्डलस्य मूलकं प्रकृतयः, ये चार विजगीष, उदासीन और शत्रु मध्यम राजमंडल की मूल प्रकृतियाँ, मूल रूप से विचारणीय स्त्रियाँ, स्थितियाँ या विषय जो हैं, अष्टौ अन्या समाख्याता, आठ मूल प्रकृतियाँ और कही गई हैं, ताह तु द्वादश एव स्मृता, इस प्रकार वे कुल मिलाकर बारह हो गई। राजमंडल की प्रकृतियों के 72 भेद बताए हैं। अमात्यराष्ट्रद्रोगार्थ दंडाख्या पंच चापरा प्रत्येकम कथिता हेता संक्षेपेण दुसप्तति। अमात्य राष्ट्र दुर्ग अर्थ दंड आख्या, मंत्री राष्ट्र किला कोष दंड नामक अपराह पंच, पांच और प्रकृतियां हैं। प्रत्येकम कथिता ही एता, 12 प्रकृतियों के साथ ये मिलकर 17 प्रकृतियां हो गईं। और इनके पांच पांच भेद होकर 72 प्रकृतियां हो गईं। 12 पूर्व की और 12 के पांच पांच भेद 60, इस प्रकार 12 पंचे 60 और 12 72 प्रकृतियां हो गईं। शत्रु मित्र और उदासीन की परिभाषा 158वें श्लोक में बताई गई है। अनंतर मरिम विद्याद ऋषेविनमेव च अरेरनंतरम मित्रम मुदासीनम तयोपरम। अनंतरम अपने राज्य के सीमावर्ती राजा को और अरिसेविनम शत्रु राजा की सेवा सहायता करने वाले राजाओं को अरिम विद्यात शत्रु ही समझे, क्योंकि अरेह अंतरम मित्तम, अरि से भिन्न अर्थात शत्रु से विपरीत आचरण करने वाले अर्थात सेवा सहायता करने वाले राजाओं को शत्रु राजा की सीमा से लगे अगले राजा को मित्र और तयोपरम इन दोनों भिन्न प्रवर्ती राजा को उदासीनम न सहायता करे न विरोध करे, इसे उदासीन विद्या समझना चाहिए। तान सर्वा न विसंध्यात सामादि भिरुपक्रमैः व्यस्तैश्चैव समस्तैश्च पुरुषेण नैन च। तान सर्वान, उन सब प्रकार के राजाओं को साम आदमी उपक्रमैः, साम दाम दंड भेद उपायों से, व्यस्तैः च समस्तैः एक उपाय से अथवा सभी उपायों से, पौरुषेण नयन अभिसंदध्यात अपनी वीरता से तथा नीति से वश में रखे। संधिच्च विग्रहं चैव यानमासनमेव च द्वैधी भावं संसंशय च खड्गुणांश्चित्तये सदा। संधिम संधि विग्रहम यानम आसनम द्वैधी भावम च संस्रत्य, विग्रह यान आसन द्वैधी भाव और संश्रय इन खड़गुणान एव छह गुणों का भी सदा चिंतित राजा सदा विचार करे। आसनम चैव यानम च संधिम विग्रहमेव च कार्यम वीक्ष प्रयुञ्जीत द्वैधम संश्रयमेव च। सब राजा आदि राजपुरुषों को यह बात लक्ष्य रखने योग्य है, जो आसनम आसन स्थिरता, यानम संधिम विग्रहम शत्रु से लड़ने के लिए जाना, उससे मेल कर लेना, दुष्ट शत्रुओं से लड़ाई करना, द्वैधम संश्रयम च दो प्रकार की सेना और स्वविजय कर लेना, और संश्रय अर्थात निर्बलता में दूसरे प्रबल राजा का आश्रय लेना, ये छह प्रकार के कर्म यथायोग्य कार्य को विचार कर उसमें युक्त करना चाहिए। संधि के भेद बताते हैं। संधिम तद्विधम विद्यात् राजा विग्रहमेव च उभियानासने चैव द्विविधा संश्रया स्मृता। संधि विग्रह यान आसने द्विविधा च संश्रय। संधि विग्रह यान आसन द्विधी भाव और संश्रय दो दो प्रकार के होते हैं, उनको यथावत जाने अगले श्लोक में। समानाय यान कर्मा च विपरीतस्तथैव च तदात्वायति संयुक्तः संदीर्घेयो द्विलक्षण द्विलक्षणः। तदा तु आयसितम आयसि संयुक्तम, पूर्वकालिक फल देने वाली, भविष्य में फल देने वाली संधि द्विलक्षणम गेया, दो प्रकार की समझनी चाहिए। पहली समान यान कर्मा, अर्थात शत्रु राजा पर आक्रमण करने के लिए किसी अन्य राजा से मेल करके उसके साथ आक्रमण करना। तथैव उसी प्रकार विपरीता, पहले से विपरीत अर्थात शत्रु राजा से आक्रमण न करने के लिए मेल करके कोई समझौता कर लेना। यह अपनी बल स्थिति देखकर उचित अवसर तक होता है। विग्रह और उसके भेद बताते हैं। स्वयं कृतस्य कार्यार्थ अकाले कालैव वा मित्रस्य चैवापकृते द्विविधो विग्रह स्मृतम्। विग्रह द्विविधा स्मृतः। विग्रह दो प्रकार का होता है, काली चाहे युद्ध में के समय निश्चित के समय में, अथवा अकाली अनिश्चित किसी समय में। ये दो प्रकार की होती है, एक तो कार्यार्थम कार्य की सिद्धि के लिए, और स्वयंकृतः स्वयं किया गया विग्रह। मित्रस्य अपकृते, किसी के द्वारा मित्र राजा पर आक्रमण या हानि पहुंचाने पर मित्र राजा की रक्षा के लिए किया गया विग्रह। अर्थात एक तो कार्यार्थम स्वयं कृतः और दूसरा मित्रस्य अपकृते। स्वयंकृत और अपकृत दो प्रकार की विग्रह होते हैं। यान और उसके भेद बताते हैं कि एकाकिनश्चात्यैके कार्ये प्राप्ते यदृक्षया संहतस्य च मित्रेण द्विविधं यानमुच्यते। आत्य इके कार्ये प्राप्ते, अकस्मात कोई कार्य प्राप्त होने में एकाकिनः एकाकी मित्रेण संहतस्य, मित्र राजा के साथ मिलके शत्रु की ओर जाना द्विविधम यानम उच्यते। यह दो प्रकार का गमन कहलाता है, यान कहलाता है। आसन और उसके भेद बताते हैं। क्षीणस्य चैव क्रमसु देवात् पूर्वकृतेन वा मित्रस्य चानुरोधेन द्विविधम स्मृतम आसनम्। स्वयं किसी प्रकार से के क्रम से क्षीणस्यैव च मित्रस्य अनुरोध, क्षीण हो जाने अथवा निर्जन निर्बल हो जाए अथवा मित्र के रोकने पर स्थान पे बैठे रहना द्विविधम आसनम स्मृतम, दो प्रकार का आसन कहता है। द्वेधी भाव और उसके भेद कहते हैं। बलस्य स्वामिनश्चैव स्थिति कार्यार्थ सिद्धये द्विविधम कीर्ति द्वैधम खाड्यगुण वेदिभिः। खाड्यगुण गुण वेदिभिः, खाद्य गुण गुण वेदिभिः, खाद्य गुण गुणों षड गुणों के महत्व को बताने वाले ने द्वैधम द्विविधम कीर्ति। द्वैधी भाव दो प्रकार का कहा है, एक तो कार्यार्थ सिद्ध है अपने कार्य की सिद्धि के लिए। बलस्य स्थिति, सेना के दो भाग करके एक भाग सेना को सेनापति के अधीन कर देना, दूसरा स्वामिना सेना का एक भाग राजा के अधीन रखना। कार्य सिद्धि के लिए सेना के दो विभाग करने करके विजय करना द्वैध कहलाता है। संश्रय उसके भेद बताते हैं। एक किसी एक सिद्धि के लिए किसी बलवान राजा अथवा किसी महात्मा की शरण लेना जिससे शत्रु से पीड़ित न हो, दो प्रकार का आश्रय लेना कहता है। अर्थ संपादनार्थम च पीड्यमानस्य शत्रुभि साधुस्य विदेशार्थम द्विविधम संश्रयः स्मृतः। शत्रुभि पीड्यमानस्य, शत्रुओं द्वारा पीड़ित होकर, अर्थ संपादनार्थम अपने उद्देश्य की सिद्धि अथवा आत्मरक्षा के लिए किसी राजा का आश्रय लेना। और व्यपदेशार्थम साधुषु, भावी हार या दुख से बचने के लिए किसी श्रेष्ठ राजा का आश्रय लेना। या ये द्विविधा संश्रय स्मृता, दो प्रकार के संश्रय यानी कि आश्रय कहलाते हैं। संधि के नियम बताते हैं। यदा वगक्षेदायत् आमादिक्यं ध्रुवमात्मनः तदा त्वेचाल्पिकां पीडां तदा संधिं समाश्रयेत्। यदा अवगक्षेत्, जब यह जान ले कि तदात्वे, उस समय युद्ध करने से अल्पिकां पीडां, थोड़ी पीड़ा प्राप्त होगी, और आत्याम पश्चात करने में आत्मनः ध्रुवम आधिक्यम, अपनी वृद्धि और विजय होगी, तदा संधिम समाश्रय, तब उस शत्रु से मिलकर के उचित समय तक धीरज रखे। विग्रह का समय बताते हैं। यदा प्रहष्टा मन्नेत सर्वांश प्रकताभ्रशम अत्युच्छ्रितम तदात्मानम तदा कुर्वीत विग्रहम यथा सर्वा प्रकृति। जब अपनी सब प्रजा और सेना भ्रशम प्रहष्टा प्रसन्न अत्यंत प्रसन्न हो जाए, अत्युच्छ्रितम उन्नतशील और श्रेष्ठ मन्नेत जाने, तथा आत्मानम तदा विग्रहम कुर्वीत, और वैसे अपने आप को उन्नतशील और श्रेष्ठ समझे, तब विग्रहम कुर्वीत, शत्रु से विग्रह युद्ध कर दे। यान का समय कहते हैं। यदा मन्नेत भावेन हृष्टम पुष्टम बलम सुखम परस्य विपरीतम च तदा याया द्रुपम प्रति। यदा स्वकम बलम हष्टम पुष्टम भावेन मन्नेत, जब अपने बल अर्थात सेना को हर्ष और पुष्टियुक्त प्रसन्न भाव से जाने, और परस्य विपरीतम और दूसरे का शत्रु का निर्बल जाने, तदा रिपुम प्रति यायात, तब शत्रु की ओर युद्ध के लिए जावे। आसन का समय बताते हैं। यदा तुषात परीक्षीणो वाहनेन सबलेन च तदासीत प्रयत्नेन शनकैः संवारिन। यदा जब बलेन वाहनेन, जब सेना बल वाहन से परीक्षीणः स्यात् क्षीण हो जाए, तब अरीन शनकैः प्रयत्नेन सांत्वयन, शत्रुओं को धीरे धीरे प्रयत्न से शांत करता हुआ अपने स्थान में बैठा रहे। और द्वैधि भाव का समय बताते हैं। मन्ने तारिम यदा राजात सर्वथा बलवत्तरम तदा द्विधा बलम कृत्वा साधेत कार्यमात्मनः। यदा राजा अरिम सर्वथा बलवत्तरम मन्नेत, जब राजा शत्रु को अत्यंत बलवान जाने, तदा द्विधा बलम कृत्वा, तब द्विगुणा अथवा दो प्रकार की सेना करके आत्मनः कार्यम साधेत, अपना कार्य सिद्धि करे। संश्रय का समय बताते हैं। यदा परबलानां तु गमनीयतमो भवेम तदा तु संश्रय क्षिप्रम धार्मिकम बलिनम नपम। यदा परबलानां तु गमति गमनीयतमः भवेत, जब समझे कि शीघ्र शत्रुओं की चढ़ाई मुझ पर होगी, तदा तु धार्मिकम बलिनम नृपम क्षिप्रम समसमेत, तब किसी धार्मिक बलवान राजा का आश्रय शीघ्र ले लेवे। निग्रहम प्रकृतीनां च कुर्याद्योरिबलस्य च उपसेवेत तम नित्यम सर्वयत्नैर्गुरुम यथा। यह प्रकृतीनां च निग्रहम कुर्यात्, जो प्रजा और अपनी सेना और शत्रुओं के बल का निग्रह करे अर्थात रोके, तम सर्वपत्नैः यत्नैः उसकी सब यत्नों से, गुरुम गुरु के सदस्य, नित्यम उपसेवेत नित्य सेवा किया करे। एक सौ 177वें श्लोक में कहते हैं। सर्वोपायैः तथा कुर्यान् नीतज्ञः पृथ्वीपतिः यथास्माभ्यधिकां न स्युर् मित्रोदासीन शत्रवः। नीतिज्ञः पृथ्वीपतिः, नीति जानने वाला पृथ्वीपति राजा, यया यथा जिस प्रकार, अस्य इसके, मित्र उदासीन शत्रुवः, मित्र उदासीन तटस्थ शत्रु, अधिकाह न स्युः तथा सर्वाः उपाये कुर्यात्, अधिक न हो शत्रु, अधिक न हो वे सारे उपाय करे। आयातिम सर्वकार्याणाम तदात्वम च विचारयेत् अतीतानाम च सर्वेषां गुणदोषै च तत्त्वतः। सर्वकार्याणाम तदात्वम, सब कार्यों को वर्तमान में कर्तव्य, और आयतम भविष्यत, भविष्यत में जो जो करना चाहिए। अतीतानाम सर्वेषां, जो जो काम कर चुके उन सब के तत्त्वतः गुण दोषों विचारयेत्, यथार्थसाध से गुण दोषों का विचार करे, पश्चात दोषों के निवारण और गुणों में स्थिरता से यत्न करे। राजनीति का निष्कर्ष बताते हैं कि यथैनम नाभिशं दर्ध्युर मित्रोदासीन शत्रुवः तथा सर्व सविद्यध्यात् देशम सामशिको नयः। सर्वम यथा विद्या तथा विद्यात्, सब प्रकार के राजपुरुष, विशेष सभापति राजा ऐसा प्रयत्न करें जिस प्रकार राजादि जनों के मित्र उदासीन और शत्रुओं को वश में करके, मित्र उदासीन शत्रुवः न अभिसंदध्यु अन्यथा न करवामे, ऐसे मोह में न फंसे, ऐसा सामासिकः नयः, वही संक्षेप से नय अर्थात राजनीति कहलाती है।